ये जो इज्तिमाई कुर्बानी वगैरह हो रही है इसको करें। ये जो हम व्यू कर रहे हैं वो ये व्यू कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। देखिए पहले तो ये एक उसूली बात ये है कि हर एक्टिविटी का एक डिसिप्लिन होता है, हर एक्टिविटी का कोई ना कोई डिसिप्लिन होता है और वो डिसिप्लिन जो है जब भी कहीं पर प्रैक्टिस होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, तो वो आपकी फ्रीडम छीनता है। सही है, कोई भी एक्टिविटी आप करें ना तो उसका एक डिसिप्लिन होगा, वो डिसिप्लिन आपकी फ्रीडम छीन देगा। लेकिन उसके साथ साथ वो डिसिप्लिन जो है वो आपको कोई गुड या कोई वर्च्यू या कोई मकसद जो है वो गारंटी करेगा कि अगर आपने ये डिसिप्लिन इख्तियार किया तो आप ये मकसद आपका पूरा हो जाएगा। यानी कि कोई भी डिसिप्लिन जो होता है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको हासिल हो जाता है अगर वो डिसिप्लिन आप इख्तियार कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि वो डिसिप्लिन जब आप इख्तियार करते हैं तो आपकी फ्रीडम भी वो डिसिप्लिन छीनता है। तीसरी चीज़ ये कि कभी भी दुनिया में कोई भी डिसिप्लिन ऐसा नहीं रहा जिस डिसिप्लिन के अंदर वायलेशन ना होती हो, हर डिसिप्लिन की वायलेशन भी होती है। यानी कि कोई भी डिसिप्लिन आप बताया जाता है ना किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन, तो उस डिसिप्लिन को एक्सिक्यूट चूँकि इंसान कर रहे होते हैं लिहाजा उसकी एक्सिक्यूशन में इल विल की बुनियाद पे, यानी कि इरादे की कमज़ोरी की वजह से, खुलूस की कमज़ोरी की वजह से, हाई स्टैंडर्ड्स की वजह से, कंटिंजेंट कंडीशंस की वजह से वायलेशन होती है। यानी कि उस डिसिप्लिन को उस तरह एक्सिक्यूट नहीं किया जा पाता जिसके लिए वो डिसिप्लिन खड़ा होता है। लेकिन ये वायलेशंस जो होती हैं उसके नतीजे में जो ऑब्जेक्टिव होता है अगर उसकी कुल्लियतन नफ़ी हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल ही हो जाए वो ऑब्जेक्टिव का हुसूल जिसके लिए वो डिसिप्लिन आपने इख्तियार किया है, तो फिर हम ये कहेंगे कि डिसिप्लिन जो है वो तब्दील हो गया है, वन काइंड ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर काइंड ऑफ डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि जिस मकसद के लिए वो डिसिप्लिन आपने बनाया था वो मकसद तो अब हासिल हो ही नहीं सकता इस नए डिसिप्लिन के अंदर, इसलिए अब ये पुराना डिसिप्लिन नहीं है, एक नया डिसिप्लिन हो गया। यानी कि इस हद तक वायलेशन हो गई हैं इस डिसिप्लिन के अंदर कि वो मकसद अब हासिल नहीं हो सकता। दूसरा, जब एक डिसिप्लिन के अंदर वायलेशंस होती हैं तो उन वायलेशंस को ओवरकम करने के लिए डिसिप्लिन के अंदर नए प्रिंसिपल्स जनरेट किए जाते हैं, नए डिसिप्लिन्स के साथ नए मैकेनिज्म्स ऑफ पनिशमेंट डेवलप किए जाते हैं। मसलन ये कि एक डिसिप्लिन है स्पोर्ट का, एक डिसिप्लिन है, तो एक डिसिप्लिन के अंदर जब वो गेम होगा या स्पोर्ट होगा तो वो स्पोर्ट लगेगा। लेकिन अगर उस सारे स्पोर्ट्समैन उस गिवन डिसिप्लिन को वायलेट करना शुरू कर दें तो जाहिर है कि वो खेल जो है वो फिर खेल नहीं रहेगा, वो तमाशा बन जाएगा, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी। तो लिहाजा आपको जो पार्टिसिपेंट होंगे उस डिसिप्लिन के उनको कंटेन करने के लिए नए नए मैकेनिज़म्स ऑफ पनिशमेंट जनरेट करने पड़ेंगे ताकि वो डिसिप्लिन इंटैक्ट रहे। यानी कि अगर फुटबॉल आप खेल रहे हैं और हाथ आपको नहीं लगाना, लेकिन हर खिलाड़ी हाथ लगाए जा रहा है, तो या तो आप डिसिप्लिन काफ़ी नहीं है कि भाई हाथ नहीं इस्तेमाल करना, तो आपको उसके लिए नए रूल्स बनाने पड़े, नए तरह के रेगुलेशंस बनाने पड़े। और हाथ लगाना गेंद को अगर फिर भी वो लोग नहीं छोड़ रहे, तो आपको नए मैकेनिज्म्स ऑफ पनिशमेंट इस हद तक के डिसक्वालिफिकेशंस पर लेके चले हैं कि भाई चार बार अगर एक स्पोर्ट्समैन का हाथ लग जाएगा गेंद से, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा पूरे मैच के लिए। तो यानी कि स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म आपको पनिशमेंट का डिवेलप करना पड़ेगा, सो दैट पीपल कैन वर्क विद इन द डिसिप्लिन। लेकिन ये जो मैकेनिज्म ऑफ पनिशमेंट्स होते हैं, वो कभी कभार इस हद तक बढ़ जाते हैं कि डिसिप्लिन का जो मकसद होता है वही फौत हो जाता है। यानी कि डिसिप्लिन जिस मकसद के लिए बनाया गया था, एक तरह तो डिसिप्लिन का मकसद कब फौत होता है, जब वायलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, एक पनिशमेंट हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो भी मकसद फौत हो जाता है डिसिप्लिन का, कि आपने डिसिप्लिन बनाया क्यों था। हद से ज़्यादा अगर आपने पनिशमेंट का मैकेनिज्म जनरेट किया, तो उसके नतीजे में लोगों की कमिटमेंट नहीं रहेगी उस डिसिप्लिन के साथ, लिहाजा उस डिसिप्लिन पे अमल करना मुमकिन नहीं रहेगा, लिहाजा उस डिसिप्लिन के साथ चलना लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहेगा।
इसका मतलब ये है सर कि वायलेशन होगी, मतलब वायलेशन तो होगी, लेकिन उसका ये है कि उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए कि लोग उससे रिट्रीट करें, और
यानी कि वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल मैकेनिज्म ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि डिसिप्लिन काफ़ी नहीं होता इंसान को ठीक करने के लिए, यानी कि एजेंसी ऑफ द डिसिप्लिन कैन नॉट बी कंटेन्ड बाय द डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, बल्कि आपको उसके साथ पैरेलल सपोर्टिंग मैकेनिज्म्स जनरेट करने पड़ते हैं, ताकि उस डिसिप्लिन पे लोग कायम रह सकें। यानी कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन का जो डिसिप्लिन होगा वो एक अच्छा फुटबॉलर नहीं पैदा कर सकेगा, इनके फुटबॉल के उसूल काफ़ी नहीं होंगे एक अच्छा फुटबॉलर पैदा करने के लिए, बल्कि उसको मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ डिसिप्लिन्स के थ्रू कंटेन किया जाएगा। यानी कि उसकी एजुकेशन ऐसी हो कि वो इस फुटबॉल को बहुत अहम चीज़ समझे, एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए मीडिया के ज़रिए जिसके नतीजे में ये बताया जाए कि जो फुटबॉलर होता है वो हीरो होता है, एक और डिसिप्लिन होना चाहिए फिज़िकल हेल्थ का जो इस किस्म की हेल्थ जनरेट करे जो कम से कम वायलेशन करें, एक ऐसा मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो इस खेल तमाशे को इल्मियत के तौर पे पेश करे। यानी कि कोई भी डिसिप्लिन अपनी पर्टिकुलैरिटी में सस्टेनेबल नहीं होता, बल्कि वो मल्टीपल चेन ऑफ डिसिप्लिन के अंदर सस्टेनेबल होता है। ये बात समझ आ गई, ये उसूली बातें हैं बुनियादी तौर पर, तो हम ये बताना चाह रहे हैं। अब इसके लिए हम एक वर्किंग एग्जांपल ले लेते हैं कुर्बानी,
यानी इसमें मतलब ये कि रुजू की जो मतलब गुंजाइश है अगर ख़त्म हो जाए, यानी कोई आदमी रुजू ही ना करे, तो फिर वो पूरा डिस्कोर्स ही खत्म हो जाएगा और कोई और डिस्कोर्स उसकी जगह लेगा,
कोई नया डिस्कोर्स उसकी जगह लेगा। और दूसरी बात ये कि इस हद तक जो है आप अगर आपने वायलेशन की कि पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो भी वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। सही, अब आ जाए कुर्बानी। कुर्बानी जो है वो रिलीजन के ही अंदर का एक डिसिप्लिन है, रिलीजियस डिसिप्लिन को प्रिज्यूम करता। अच्छा, एक आखिरी बात जो डिसिप्लिन के हवाले से बतानी चाहिए कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स जो होते हैं उनमें कोहेसिव रिलेशनशिप भी होते हैं और एडहेसिव रिलेशनशिप्स भी होते हैं, यानी कि कंसोसिएशनल यानी कि सपोर्टिंग डिसिप्लिन्स भी हो सकते हैं और एंटागनिस्टिक डिसिप्लिन्स भी हो सकते हैं, यानी कि डिसिप्लिन्स के बाहमी ताल्लुक की भी बड़ी अहमियत होती है। यानी कि एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के साथ नामियाती तौर पर मुंसलिक और मरबूत है, तो उसके नतीजे में डिसिप्लिन जो है वो ताकतवर होगा। लेकिन अगर उसके साथ चलने वाले पैरेलल डिसिप्लिन्स जो हैं उसके एंटागनिस्टिक हैं, ऑपोजिट है या मुखासिमाना उनका रिलेशनशिप है, तो वो डिसिप्लिन जो है वो कमज़ोर होंगे और उनके दरमियान टकराव होगा। यानी कि डिसिप्लिन्स जो होते हैं उनके दरमियान एक मुखासिमाना ताल्लुक भी होता है, यानी कि डिसिप्लिन्स एक एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप भी प्रज्यूम करते हैं। अब इन चार पांच चीज़ों के या बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि कुर्बानी क्या होती है। यानी कुर्बानी आपके घर पे होती है तो आप एक जानवर लेके आ जाते हैं अपने घर पर। सवाल ये, आप जानवर क्यों लेके आए, क्या हो गया, जानवर आप क्यों लेके आए? उसी बहुत सारी वजूहत है। आपकी मोहल्ले में इज्जत हो, आप गोश्त खाएं, आप हराम खोर सरकारी मुलाजिमों के घर में बकरों की रानें भिजवाएं, आप अपनी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाएं, आप मुल्क की माशी तरक्की में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, आप सॉसेजेस इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करना चाहते हैं, आप बहुत सारी वजूहत हैं। अब ये जो आप ले आए हैं ना जानवर, ये आते ही एक नया डिसिप्लिन पैदा कर देगा कि आपको उसे रखना है, आपको उसे खिलाना है, आपको उसे पिलाना है। इसके साथ बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे। कुछ लोग पूरा साल जो है ना कमाते हैं बकरीद के अंदर चारा उगाकर, पूरे साल की कमाई होती है उनकी, 10 दिन जो वो बेचते हैं ना चारा, उससे पूरा दिन पूरा साल गुजारते हैं। इतना वो चारा बना देते हैं, इतनी तरह का चारा उगा देते हैं जो कि 2 महीने में फसल तैयार हो जाती है और वो उससे फिर वो पूरा साल बैठ के खाते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे मुंसलिक होते हैं। आप अगर फ़र्ज के, सवाल ये है कि आप कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? बुनियादी तौर पर आप चारा बेचना चाह रहे हैं या आप सॉसेजेस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, हिंदुस्तान के साथ खालों की उसमें कम्पीट करना चाहते हैं, आप जो है वो खैराती इदारे चलाना चाहते हैं, आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करना चाहते हैं, क्या क्या असल में आप क्या करना चाहते हैं? तो एक रिलीजन ये कहता है कि देखो भाई ये सब चीज़ें इररेलेवेंट है, रेलेवेंट ये है कि खुदा को खुश करना है। तो असल में बुनियादी तौर पर ये रिलीजन का डिसिप्लिन है, रिलीजन। सवाल ये कि मैं ये डिसिप्लिन क्यों इख्तियार करूँ, क्या हो गया मुझे, मैं ये डिसिप्लिन इख्तियार करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सॉसेजेस इंडस्ट्री को ये आते मिलेंगी या इंडिया हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए सस्ती खालें मिलेंगी या क्यों? क्योंकि खालों की जो कॉस्ट होती है इन ख़रीदार ख़ुद पे कर देता है, मुफ्त में देते हैं ना लोग खाने, खाने जिनको दी जाती हैं वो मुफ्त में दे देते हैं उनको, जो इंडस्ट्री तक पहुंचती हैं वो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, कम कॉस्ट होती है। अगर फंस गया खाल मैं बेचूं, फिर वो कोई और बेचे, फिर वो जाके इंडस्ट्री को पहुंचे तो 2-3 जगह पे वो बिक रही है, लेकिन मैं जो कि ओनर है खाल का वो तो मुफ्त में ही दे रहा है खाल, जो ओनर है वो गाय के गोश्त का वो तो मुफ्त में दे रहा है, जो उसकी आलाइश है सब कुछ मुफ्त में दे रहा है, तो मुफ्त में दे रहा है, नहीं तो उसको क्या पागल हो गया है, मुफ्त में क्यों दे रहा है वो, क्या हो गया उसको, मुफ्त में क्यों दे रहा है वो इसे इबादत समझ के दे रहा है। इस ये पर मसला उसको कि वो ये समझ रहा है कि मैं इससे खुदा खुश होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस डिसिप्लिन का, कि खुदा खुश होगा बुनियादी तौर। ये डिसिप्लिन मैं इसलिए इख्तियार कर रहा हूँ कि ये सुन्नत है और इसको जब मैं एक्सिक्यूट करूँगा तो उसके नज़दीक में खुदा को जाऊँगा। अब चूँकि ये डिसिप्लिन है लिहाजा इस डिसिप्लिन के और एक्सिक्यूट कर रहा है इंसान, तो इंसान जिस हज़ारों तरह के होते हैं तो इंसान वायलेशन भी करते हैं, यानी कि इसमें वायलेशन होंगी हज़ारों तरह की। एक वायलेशन ये होगी कि लोग खुदा को खुश करने से ज़्यादा अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खुश करेंगे, या लोग मोहल्ले वालों को डराएंगे, या ये कि लोग जो है वो मुनाफा खोरी करेंगे, या लोग जो है जानवरों को मुर्गी की फीड खिला के मोटा करेंगे, या लोग जो है वो बीमार जानवर बेच देंगे, या लोग जो है वो क्या कहते हैं हराम खोरी के पैसों से जानवर खरीद लेंगे। ये सब वायलेशन है। ये सारी वायलेशन अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है खुदा तो खुश नहीं हो रहा इन वायलेशन से। अरे आप अल्लाह के लिए तो नहीं कर रहे तो खुदा क्यों खुश होगा? लेकिन ये कौन बताएगा कि अल्लाह खुश नहीं हो रहा? इसका फैसला कौन करेगा? अल्लाह ही करेगा ना इसका फैसला। तो जब अल्लाह ही फैसला करेगा तो आप पहले कैसे तय कर सकते हो कि अल्लाह खुश हो रहा है या नहीं हो रहा? आप उसकी वायलेशंस की इंटेंसिटी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्लाह ताला खुश हो रहा है नहीं। तो आपको ज़ाहिर इन वायलेशन को और कम करने के लिए जो डिसिप्लिन इख्तियार करना है वो कौन सा डिसिप्लिन होना चाहिए? वो रिलीजन का ही डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने रिलीजन के अलावा किसी और चीज़ का डिसिप्लिन इख्तियार किया तो उसके नतीजे में खुदा तो खुश नहीं होगा। लिहाजा अगर कुर्बानी के अंदर कोई और डिसिप्लिन आपने इख्तियार किया तो उसके नतीजे में हो सकता है कि आप कुर्बानी इस तरह से कर लें जिसके नतीजे में शहर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, हालात ख़राब ना हो, मुनाफा खोरी ना हो वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद खुदा खुश ना हो, ये पॉसिबल है। तो इन वायलेशंस को देखते हाँ क्या हाँ कुर्बानी क्यों करें? मैं जानता हूँ आम तौर पे जो पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी है, उनकी एक खसूसियत यह है कि वो कुर्बानी नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि चूँकि सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने ये कहा कुर्बानी करने अय्याम नहर में ही कुर्बानी करने का वाजिब करार दिया सिर्फ इमाम अबू हनीफा ने, ना इमाम मालिक ने कहा, ना इमाम शाफई ने कहा, ना इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा। लिहाजा तीन ने ये आइम्मा सलासा ने नहीं कहा, लिहाजा ज़रूरी नहीं। बाकी सारी चीज़ों में इमाम हनीफा को फॉलो करते हैं, जहाँ पे माल वाल खर्च करना होता है वहाँ इमाम अब अहमद बिन हम्बल का इतना सख्त है पोजीशंस बहुत सारी जगहों पे, वो वहाँ पे वो उनको नहीं फॉलो किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो जाकर बहुत ही ज़्यादा अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप जाके पैसे दे आते हैं किसी गरीब रिश्तेदार को या ये इनके ये किसी खैराती इदारे को। देखिए मसला क्या होता है, रिलीजन के अंदर डिसिप्लिन जो होता है उसमें अल्टीमेट अथॉरिटी होता है पैगंबर। पैगंबर ने किस तरह से किया, इसका मतलब ये होता है कि खैर के इजहार का उस डिसिप्लिन या उस एक्टिविटी के लिए जो आइडियल तरीका होता है वो वही होता है जो पैगंबर ने किया होता है। सही है? तो पैगंबर ने ये नहीं किया। पैगंबर के ज़माने में लोग भूखे होते थे, पैगंबर के ज़माने में भी लोग जो होते बेरोज़गार होते हो सकते होंगे और उसमें भी कुछ बेवाएँ होती होंगी यतीम होते, लेकिन वो कुर्बानी करते थे। सही है? 10 बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए कुर्बानी, मदीने आने के बाद 10 बार किए हैं खालिद
जी,
और 1 बार हज किए, हज 1 बार किए और कुर्बानी 10 बार किए तवातुर के साथ किए। तो इसका मतलब ये है कि ये तरीक़ा कुर्बानी करने का पैगंबर से इस्टेब्लिश्ड है। अब आप कहते हैं कि भाई हम लोग जो है ये पाकिस्तान में जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कुर्बानी को। तो देखें, जब आप इबादत जो होती है ना, किसी इदारे के ज़रिए नहीं होती, इदारे के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं खुद, समझे, किसी कोई और आपकी तरफ से इबादत नहीं करेगा। पैसा देना इबादत नहीं होता, इबादत के लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, सही है। तो अगर फर्ज किया कि आप जो है, आपके और उस अमल के बीच में एक इदारा आ जाता है ना, तो उसके नतीजे में आपकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं, इरेडिकेट हो जाती हैं। मसलन जब आप एक जानवर घर लेके आते हैं, तो जानवर के साथ आपको कैसे रहना है, किस तरह उसको साथ रिलेट करना है, किस तरह उसको हलाल करना है, किस तरह आपको उसके साथ डील करना है, फिर जब उसका गोश्त बन रहा होता है तो उसके अंदर एक एक गोटी को आपको कैसे करना है, उसके अंदर हर लम्हे पे आपकी मोरालिटी भी जज हो रही होती है और आपका खुलूस भी जज हो रहा होता है और आपका कंसेप्शन ऑफ जस्टिस भी जज हो रहा होता है। जस्टिस करने के लिए आपको कोट पतलून पहन के किसी उस पर कुर्सी पे नहीं बैठना होता, जब आप हिस्सा लगा रहे होते हैं ना गरीबों का और अजीज़ों का और अपना, उसमें भी जस्टिस इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर भी जस्टिस एक्सिक्यूट हो रहा होता है। तो ये जो पूरा अमल होता है, पूरी जो एक्टिविटी होती है, इस पूरी एक्टिविटी को आप परसू करें, तो उसमें वाहिद जो जस्टिफिकेशन आज 2013 के अंदर लोगों को मिलती है वो ये मिलती है कि कुर्बानी का वाहिद जस्टिफिकेशन ये लोगों के जहनों में आती है जो शरीफ टाइप के लोग होते हैं, वो ये कि इससे गरीबों को खाने को गोश्त मिल जाएगा, जो कि वो गरीबों को नहीं देते। ये सिर्फ जस्टिफिकेशन की सजा है, यानी कि इबादत का मतलब होता है गरीब लोगों के लिए कुछ करना, और इसमें आप उनको कर देंगे कुछ ना कुछ, ये आपका होता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी जो चीज़ लोगों के जहनों में एसोसिएटेड है वो ये कि इबादत का मतलब होता है तकलीफ, इबादत के नतीजे में अगर तुम्हें कोई खुशी और कोई लज्जत और कोई मज़ा आ रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या बात है, खुदा कह रहा है खाओ ना गोश्त, खा लो, नहीं, इबादत जो होती है उसके नतीजे में तकलीफ़ें मिलनी चाहिए, अजियतें मिलनी चाहिए और सब लोग रोएं चीखें पीटें अपने आप को, तो इबादत हो रही है। लेकिन अगर लोग गोश्त खा रहे हैं तो ये बड़ी, यानी कि मुसलमानों को सिर्फ भूखे मरना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि सब भूखे मरें, लेकिन अगर मुसलमान खा रहे हैं गोश्त वोश्त खा रहे हैं तो ये को बहुत ही गंदा काम हो रहा है, गंदा काम हो रहा है। तो उनके जहन में ये होता है कि फिर ऐसा करना चाहिए कि एक बोटी भी घर में ना आए, हम लोग खाते पीते लोग हैं, ये किसके लिए होता है, भिखारियों और नंगों और भूखों के लिए होता है, लिहाजा हम एक भी बोटी नहीं लेके आएंगे, सब बाढ़। हालांकि अपने बकरीद का गोश्त खाना सुन्नत है, खाना सुन्नत है, समझे, लेकिन आप, यानी कि आप जो है ना खुदा को खुश करने के लिए एक डिसिप्लिन, जो खुदा ने तुमसे नहीं कहा, खुदा ने नहीं कहा कि तुम मत खाओ गोश्त, खुदा ने कहा खाओ तुम इस तरह खाओ, सही है ना। आपने उससे आगे बढ़ के कहा हम तो गोश्त खाएंगे ही, अब ये क्यों, क्योंकि ये तो भंगियों और भूखों और नंगे भिखारियों का होता है। तो पहली बात, तुमने एक ऐसा माशरा क्यों पैदा किया है जो जिसके अंदर लोगों को गोश्त ही नसीब नहीं होता पूरे साल, कौन सा अच्छा माशरा तुमने पैदा किया है। और दूसरी बात ये है कि तुम एक अमल को करने के लिए एक दूसरे अमल को छोड़ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम बहुत सारे जो जिन जिन डिसिप्लिनस के अंदर रहकर कुर्बानी को देख रहे होते हैं वो डिसिप्लिन ऑफ द कैपिटल है बुनियादी तौर पर। इनके कैपिटल के अंदर सबसे बड़ा कुर्बानी क्या होती है, कैपिटल को मुनाफा ना लेना, सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होती है कि मैं मुनाफा नहीं कमाऊंगा। कैपिटलिज्म के अंदर मुनाफा नहीं कमाना, अपने मफाद को छोड़ देना बहुत बड़ा काम होता है, लिहाजा जब आप कहते हैं मैं अपना ये गोश्त छोड़ रहा हूँ, तो आप समझते हैं कि मैं तकरीबन हज़रत अबू बकर के अरीब करीब पहुँच गया हूँ। क्यों? क्योंकि एक बोटी भी घर में नहीं ला, खुदा और उसके रसूल का नाम जो कि मेरे घर में है ही नहीं, वो भी नहीं है मेरे घर में, और एक बोटी भी नहीं है, तो मैं तकरीबन हज़रत अबू बकर के अरीब करीब पहुँच गया हूँ। सही है। ये और बात है कि आप वेजिटेरियन होंगे या सी फूड लेते होंगे, आप खाते ही नहीं होंगे, आपको डॉक्टर ने बताया होगा यूरिक एसिड है, मर जाओगे, गोश्त खाओगे तो हड्डियाँ टेढ़ी हो रही हैं, आर्थराइटिस हो रहा है, ये वो सब कुछ नहीं बताते, लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये बताते हो कि भाई मैं एक भी बोटी गोश्त नहीं लेके आता। तो बुनियादी तौर पर इन सारे मसाइल को देखते हुए अब हो ये रहा है कि लोग जा रहे हैं इज्तमाही क़ुरबानी की तरफ, तो बज़ाहिर लोगों को ये लगता है कि ये कोई चॉइस ले रहे हैं, यानी कि आप इस तरह भी कर लो, इस तरह भी कर लो, इस तरह भी कर लो, लेकिन जब डिसिप्लिन गालिब आना शुरू होता है ना, तो वो अपने कंपीटिंग डिसिप्लिनस को अहमकाना साबित करता है, इररेलेवेंट साबित करता है, और उनको वाइप आउट करता है। यानी कि जब एक डिसिप्लिन गालिब आना शुरू होता है तो वो अपने कंपीटिंग डिसिप्लिनस को चलने नहीं देता। मसलन ये कि ये नहीं होगा कि इज्तमाही क़ुरबानी का निज़ाम ज़ोर पकड़ जाए और आपके पास ये इम्कान भी रहे कि आप अपने घर पे लाके भी क़ुरबानी करें, ये दोनों डिसिप्लिन साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि इज्तमाही क़ुरबानी का जो डिसिप्लिन होगा वो गैर माकूल साबित करेगा, अहमकाना साबित करेगा आपके अपने घर पे लाके क़ुरबानी करने को। अब सवाल ये है कि गालिब कौन सा डिसिप्लिन होगा? गालिब होगा इज्तमाही क़ुरबानी का डिसिप्लिन। क्यों? इसलिए नहीं कि ये बहुत ज़्यादा खुदा को खुश करने वाला है, इसके नतीजे में बेशुमार सुन्नतें टूट जाएंगी। इसमें पहली सुन्नत ये टूटेगी कि जानवर आप खुद ज़िबा नहीं करें, आप ये सुन्नत टूट जाएगी कि आप उसको जानवर की रखवाली आप करेंगे, अब ये भी टूट जाएगी कि आप जो है अपने हाथ से उसकी तकसीम करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। आप और आपके जानवर के बीच में एक बहुत बड़ा इदारा आ जाए और ग्रेजुअली इम्कान इस बात का ख़त्म होता चला जाएगा कि उस डिसिप्लिन के अंदर आपका अमल दखल कम होते 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 एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। सिर्फ ये होगा कि आप जानवर का गोश्त उठा के घर ले आए, सिर्फ ये होगा। यानी कि इसका मतलब जानवर की शक्ल तक एक वक्त आएगा कि आप देखने के काबिल नहीं रहेंगे।
ये भी पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ का गोश्त खा रहे हैं।
हाँ, ये भी पॉसिबल है। हाँ, घर भी पहुँचा
देंगे।
अब नहीं, अभी अभी मैं इस पर आता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इज्तमाही क़ुरबानी का जो डिसिप्लिन है वो बुनियादी तौर पर कैपिटलिस्ट डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट है, जो बुनियादी वजह। यानी कि ये डिसिप्लिन इसलिए गालिब नहीं आ रहा कि ये डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा खुदा के इरादे के करीब है। ये डिसिप्लिन कैपिटल के डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट है, इस वजह से ये डिसिप्लिन गालिब आएगा। यानी कि जब आप फ्रीली जाकर एक जानवर ख़रीद के लाते हैं, तो इसके नतीजे में बड़ी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन फंक्शनल नहीं, डिसफंक्शनल होती है। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। लेकिन याद रखें, कैपिटलिज्म हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता है। और ये जो आम क़ुरबानी का तरीका है ना, जैसे अभी कराची में आपने देखी, पाकिस्तान में 2 खरब रुपए इस साल 2 खरब रुपए के जानवर बेचे और ख़रीदे गए, 2 खरब रुपए, 200 अरब रुपए के जानवर खा के बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा कैपिटलिस्ट होगा वो देख रहा है कि मेरी नाक के नीचे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें मेरा हिस्सा क्या? इसमें बड़ी मल्टीनेशनल का हिस्सा नहीं है। ये 200 खरब रुपए जो है इस्तेमाल हुए हैं और इसके अंदर लेमैन इस्तेमाल हुए, आम आदमी तक गया ये पैसा। यानी कि रोड के ऊपर जो आलाइशें साफ कर रहे हैं वो तक इससे मुतमत्ते होते हैं, जो भंगी होते हैं वो तक इससे मुतमत्ते होते हैं। यानी कि मेरे जो जमादार है इलाके का, उसके वो क्रिश्चियन है, तो ज़ाहिर है उसको काम बढ़ जाता है। तो मैंने उससे कहा यार बकरीद में तुम्हारी तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत। उन्हें नहीं यार क्या बात है, इसमें तो यार हमें बहुत पैसे कमा रहे, हम तो चाहते हैं कि दो बार आए, इसमें लोग बड़े पैसे देते हैं। यानी कि सफाई बकरे वकरे आ जाते हैं उसकी सफाई के उनके पैसे डबल हो जाते हैं, फिर पर डे के हिसाब से भी उनके पैसे बढ़ जाते हैं, फिर जानवर कटते हैं उनकी आलाइशें वो बेचते हैं उससे भी उसको पैसे मिलते हैं। यानी कि एक जमादार को भी पैसे मिलते हैं जब आप करते हैं कॉन्सेंट्रेट करें। यानी कि कैपिटल का इंटरेस्ट ये है कि ये डिस्पर्स ना हो, डिस्पर्स। अच्छा, दूसरा ये कि ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान के अंदर होती है ना कुर्बानी, डिसेंट्रलाइज्ड कुर्बानी, ये होती है लेबर इंटेंसिव। इससे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो सारी की सारी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि पाकिस्तान में अगर 5 लाख जानवर कुर्बान हुए तो उसके अंदर कम से कम अगर आप 5 आदमी भी पर जानवर लेते हैं कि वो किसी ना किसी तौर पर ह्यूमन कैपिटल इस्तेमाल हो रहा है या ह्यूमन लेबर इस्तेमाल हो रही है, तो 25 लाख इंसान डायरेक्टली उसके अंदर उसको उसको उसके गोश्त को काटने और फिनिश्ड फॉर्म में लाने तक इस्तेमाल हुए। उसके बाद जो उसकी आलाइशें हैं उसमें लाखों इंसान इन्वॉल्व हैं और ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज जब ये होते हैं तो उसके नतीजे में पैसा जो आता है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, डिसेंट्रलाइजेशन होती है। लेकिन पैसे की ज़बरदस्त किस्म की मोबलाइजेशन भी होती है, पैसे की मोबलाइजेशन होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं इज्तिमाई कुर्बानियाँ तो ह्यूमन कैपिटल कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में हर चीज़ पे वो कब्ज़ा कर लेता है वो इदारा। आलाइशों पे भी वही कब्ज़ा कर लेता है, खालों पे भी वही कब्ज़ा कर लेता है, गोश्त पे भी वही कब्ज़ा कर लेता है, हर चीज़ पे वही कब्ज़ा कर लेता है और पैसे भी उसी के पास आ जाते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो डिसेंट्रलाइज हज़ारों लोग जो लोग छुरियाँ और चाकू और बुगदे लेके निकलते हैं, जिनको हर टीवी चैनल गालियाँ बक रहा है और हर टेलीविज़न चैनल जो है वो दिखा रहा है मेट्रो और अनाड़ी खजाई और ये और वो फला, वो दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं और वो स्लॉटर हाउस डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन भाई वो तो कैपिटल इंटेंसिव है, वो लेबर इंटेंसिव है ही नहीं। तो उसके नज़र में तुम्हारा जानवर तो अच्छा कट जाए लेकिन सारा पैसा किसके पास जाएगा, कोऑपरेशन के पास जाएगा। तो पहली बात तो ये कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है रिवायती माशरों के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन एक पसंदीदा अमल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। सवाल ये कि इम्तियाज़ अगर इतना सारा करोड़ों रुपए कमा रहा है महीने का तो ये इसमें भी क्यों घुस रहा है वो? इसलिए कि ये यही है रैशनल ऑफ द कैपिटल कि किसी को नहीं कमाने दो, किसी को नहीं मिलेगा। सही। अच्छा, अब ये जो भाई इज्तिमाई कुर्बानी वाले जो लोग हैं ये क्यों आए? ये लोग इसलिए आए कि ये चाहते हैं कि भाई मदरसों को खा ले मिले, इसलिए आ गए। नहीं तो पहले मदरसों को खा ले नहीं मिलती थी, पहले खा ले मिलती थी, अब खा ले क्यों नहीं मिल रही? अब खा ले इसलिए नहीं मिल रही भाई कि आपने ज़कात के अंदर एक हीला इस्तेमाल किया कि ज़कात में जो रब्बुल माल है वो आप चूँकि दे रहे हैं, ये मसारिफ ज़कात में ही आता है। हालांकि मदारिस और मसाजिद जो हैं वो मसारिफ ज़कात में नहीं आती, आपने वो हीला कर लिया तो आपने कहा नहीं इनको दी जा सकती है, तो हॉस्पिटल भी आ गया आपकी कंपटीशन पे, और उसने भी कहा कि मुझे, मैं भी ज़कात दूंगा, और स्कूल बच्चों का स्कूल चलाने वाली उनके वो भी ज़कात मांग रही, और जो क्या कहते हैं जो बूढ़े और आदमी और औरतों के लिए जो इदारे होते हैं ओल्ड हाउस वाले, वो भी ज़कात के पैसे मांगने आ गए। तो आपके कंपेटिटर बन गए आपके हीले की वजह से। आपने ये हीला इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे, हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेज़ आकर आप पर हुकूमत कर रहे थे, आपने कहा रियासत तो मौजूद नहीं है, लिहाजा ज़कात लेने की ज़िम्मेदारी रियासत की तो नहीं रही, तो अब ज़कात कौन लेगा, ज़कात हम लेंगे। अच्छा भाई जो अंग्रेज़ तो मुँह काला करके चले गए ना, आप रियासत कायम हो गई, अब आप क्यों ले रहे हो भाई ज़कात, आप लो रियासत से ज़कात, रियासत आपको देगी। लेकिन आपने कहा नहीं रियासत बातें ना, रियासत ज़कात नहीं देगी, रियासत को नहीं बल्कि हमें दो ज़कात। तो आपने रियासत को तो कायम करने की कोशिश नहीं की बल्कि आपने कहा ज़कात। तो भाई आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स आ गए और वो आपसे ज़्यादा कंपेटिटिव हैं, लोग आपकी दाढ़ी और आपकी पगड़ी से डरते हैं और आपके शलवार से डरते हैं, लिहाजा वो उन लोगों को देंगे ना जो कि NGO भी चलाते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं और आपसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम भी करते हैं। अब आप आ गए इसके ऊपर, वहाँ से तो नहीं मिल रहा ज़कात, तो अब खाले जमा करूँगा, खालों की इज्तिमाई कुर्बानी। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो बड़ा कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है वो आपको छोड़ देंगे, उसमें तो डायरेक्ट इसमें तो मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है भाई, मिलियंस ऑफ डॉलर का खेल है ये, तो वो आपको छोड़ देगा। वो आपसे कहेगा भाई ये जो मौलवी होते हैं ना इन, ये लोग तो सारा मिसमैनेज कर देते हैं, गोश्त सारा सड़ा देते हैं, भाई आप नमाज पढ़ाओगे, रोज़ा वो दारुल इफ्ता चलाओगे, गोश्त कटवाओगे आप, कसाई हो गया आप, कसाइयों को मैनेज करोगे आप। थोड़े दिन बाद एक आ जाएगा मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, वो कहेगा भाई हम काट के देंगे आपको जान पर, इनको क्या पता मौलवियों, मौलवी क्या बेचते हैं, ये देखें ये है मशीनें, ये ऐसे ऐसे बड़ा, ये जानवर इस तरह जाएगा, और एक मौलवी को हमने बिठाया हुआ है जो बस बैठ के कलमा पढ़ता रहेगा वहाँ बैठ के, इन नहीं हुआ जहाँ हुआ जी, अरे वो पढ़ता रहेगा अपना दुआ, और ये ठपा ढप ठपा ढप ठपा ढप कटते रहेंगे, और ये खाले उतरेंगे जाने सेहत के उसूलों के ए मुताबिक चक्का चक ये बनेगा, और उसके बाद वो एक खुर तक ज़ाया नहीं होने देगा, और एक आना नहीं मिलेगा किसी आदमी, एक आना कहते हैं वो नहीं मिलेगा किसी, ना किसी जमादार को मिलेगा, और पाकिस्तानी सारे लाइन लगा के खड़े हुए होंगे वहाँ पे वो करने के लिए, और वहाँ पर जो है वो बुकिंग करवा रहे होंगे, उसमें ख्वातीन को भी बिठा देंगे और मौलवियों को भी बिठा देंगे और सबको बिठा देंगे, और वो टोकन बांट रहे होंगे और सब पे लाइन लगा कर जो है ये सब कुछ लोग कर रहे होंगे, और ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर की होती है, देखें सप्लाई जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है ना उसकी, उसमें खूबी क्या होती है, सप्लाई चेन आपके पास नहीं होती और डिमांड चेन भी आपके पास नहीं होती, आप फ्री बूटर होते हैं, आप इस पर तवक्कुल अल्लाह पे निकलते हैं कि मुझे पता नहीं आज कोई जानवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मल्टीनेशनल अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करती, लिहाजा वो सबसे पहले काबू करती है सप्लाई और डिमांड चेन को, दोनों चीज़ों को, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन सप्लाई लाइन को पहले कंट्रोल करती है। तो वो जाकर बाजार से नहीं खरीदेगी, वो अपने बड़े बड़े फार्म हाउसेस होंगे उसके, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से लेकर है, और वो क्या खिला के ला रहे हैं, क्या पिला के ला रहे हैं, क्या करके ला रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो ये जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन आएंगी इसके अंदर, तो तुम्हारा क्या ख्याल है मस्जिद के जो मौलवी हैं कम्पीट कर सकेंगे, एक आना नहीं मिलेगा, एक खाली मिलेगी, एक चवंडी इनको नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उनके पास इबादत कौन सी सुन्नत पे वो अमल करेंगे, किसी एक सुन्नत पे वो अमल नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म कि जो फॉल्ट लाइन है वो ये कि शहर गंदा हो जाता है, तो आप जिस किस्म के शहर बना रहे हो उस शहर के अंदर मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के स्लॉटर हाउस चलेंगे या ये गली और मोहल्लों के अंदर जो जानवरों को ज़िबा कर रहे हैं लोग, वो चलेगा। तो पहली बात तो ये कि जो रैशनल लाइफ फॉर्म है उसके अंदर स्लॉटर हाउस चलेंगे, और स्लॉटर हाउस की मैनेजमेंट नो चांस कि ये मौलवी जो है उसको कंप्लीट कर पाए। वो कैपिटल इंटेंसिव से लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव होगी, और सारा का सारा ये खरबों रुपए जो है पाकिस्तानियों के, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की जेब में चले जाएंगे। और अगर किसी पाकिस्तानी खबीस ने बना लिया ये, तो उस वो कौन सा ज़्यादा बहुत अच्छा होगा कि एक ख़ानदान के पास चला जाए सारा पैसा? ये कौन सी अच्छी बात है भाई? ये अच्छी बात नहीं है कि 2 खरब रुपए हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों में तकसीम कर हो गए सुन्नत इब्राहिमी की वजह से, और उसके अंदर कोई मसला हुआ है तो उसको आपको ख़ुद ही टेकअप करना चाहिए था। उन वायलेशंस के लिए जो डिसिप्लिन्स इख्तियार करने चाहिए थे वो आपको ख़ुद ही इख्तियार करने चाहिए थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और एक वक्त आएगा कि स्टेट पाबंदी लगा देगी लोगों के ऊपर कि कोई आदमी अपने घर में कुर्बानी नहीं करेगा, सब ले जाकर स्लॉटर हाउस में करवाएंगे जो कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के होंगे, और जो आदमी ऐसा करते हो पाए उसे पकड़ के बंद कर देंगे, लॉ बना दिया जाएगा। तो जो आदमी सुन्नत इब्राहिमी को इब्राहिम की तरह से और पैगंबर की तरह से करना चाह रहा है, वो लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और स्लॉटर हाउस की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो कि रैशनल ऑफ द कैपिटल और रैशनल ऑफ सिविल सोसाइटी और रैशनल ऑफ द कॉस्मोपॉलिटन लाइफ वर्ल्ड से कंसिस्टेंट होगा, वो सर्वाइव करेगा, और जो इससे सर्वाइव नहीं कर रहा वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं रहेगा कि कम अज़ कम कराची और लाहौर के अंदर ये लॉ होगा कि आप कुर्बानी नहीं करेंगे, जैसे इंग्लैंड के अंदर और अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर मौजूद, सऊदी अरब में भी, देखिए। तो आपने जो 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 स्ट्रक्चर डेवलप किया वो स्ट्रक्चर एक वक्त आएगा कि इम्पॉसिबल कर देगा किसी भी अमल को। क्यों? इसलिए नहीं हो रहा ये कि खून आपके घर के आगे पड़ा हुआ, इसलिए कि डिसिप्लिन ऑफ द कैपिटल के ख़िलाफ़ है। इट इज़ अगेंस्ट द डिसिप्लिन ऑफ द कैपिटल के भाई तुम ये कर क्यों रहे हो, ये इस तरह करने से फ़ायदा क्या है? नहीं भाई, इस तरह करने से सुन, इस तरह करने से गंदगी होती है, इस तरह करने से ये होता है, इस तरह करने से कोई खुदा खुश नहीं होता, सफाई नहीं से। लिहाजा हर चीज़ जो है मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस के हवाले करते चले जाओ, और पूरी यानी कि पाकिस्तान के अंदर कैश के ऊपर होता है ऐसा काम सारा, कैश पर बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते। जब ये होता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगी तो सब बैंक्स के थ्रू होगा। ये जो खरबों रुपए पाकिस्तान में अभी ख़रीदे और बेचे गए ना, इसमें बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये सारा काम कैश पे होता है। आपको पता है भावलपुर में इधर उधर जानवर ख़रीदने आते हैं कितने पैसे लेके जाते हैं? एक वक्त 20-20 करोड़ रुपए कैश लेके जाते हैं। 10 करोड़ के जानवर ख़रीदे उसने, 5 करोड़ के जानवर ख़रीदे, और उसके अंदर 5 करोड़ के ऊपर पैसे होते हैं, 5 करोड़ में 5 लाख ऊपर। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ में 5 लाख रुपए के जाली नोट भी होते हैं, पता होता है सबको इसमें जाली नोट होंगे। तो ये गड्डी वो जो बेच रहा हो खोल रहा होता है ना, तो आप देखोगे यूं यूं करके डाल रहा होता है टक 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 हाथ से, जाली नोट अलग रख रहा होता है। तो कभी कभार कितने के जाली नोट आपने 5 करोड़ के किए तो उसमें जाली नोट निकले ही नहीं, तो 5 लाख आपको मुफ्ते में मिले। यानी कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया हुआ है जाली नोट टोकन। और ये जो तुम कहते हो कि बैंकों पे वहाँ पे क्यों नहीं करते हमला, वहाँ पे लूट के क्यों नहीं लेके चले जाते? सिस्टम है भाई, पकड़ लेंगे हलक में निकाल लेंगे सारा पैसा। करोड़ों रुपए लेके आते हैं और करोड़ों रुपए की कैश पे उठा के ले जाते हैं। तो बताने का मतलब ये कि जब आप इसको सेंट्रलाइज करेंगे तो दूसरा क्या होगा, सारा काम होगा थ्रू बैंक्स। अभी जो आगे हैं बड़े जो वो हैं जो फार्म हाउस खोलने, उन्होंने क्या किया, सफारी सारे फार्म हाउसेस के अंदर जो जानवर उन्होंने पाले उनको क्या खिलाया, उन्होंने जो बड़े बड़े बैल हैं इनको क्या खिलाया, दूध मक्खन कोई नहीं खिलाता भाई, बेवकूफ़ नहीं होते, इंजेक्शन नहीं लाते, उन्हें पता नहीं है क्या खिला रहे, मुर्गी की फीड खिला रहे भाई, मछली और मुर्गी की आंतें, उससे वो इतना मोटा हो गया। तो तुम एक हर्बीवोरस को तुमने उसे ओमनीवोरस बनाया, ये जो आम पंजाब का जो आदमी होगा ना वो ये नहीं कर रहा। जब आप करते हैं, जब आप मास इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर आप जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज की तरफ। आप कहते हैं मैं ज़्यादा मजदूर क्यों लाऊं, मैं थोड़ी दिन में जल्दी क्यों ना इसको मोटा कर लूं, थोड़े ही दिन में इसको मोटा क्यों ना। यानी कि लालू खेत के अंदर एक आदमी है जो 80 गज के घर पर दो जानवर पालता है, सही है, जब वो पैदा होते हैं उसके बाद उनको एक साल में पालता है, सही है, तो वो एक साल या दो साल पालता है, दो साल पालता है, वो दो साल तक नीचे नहीं उतरते, तो दो साल बाद क्रेन से उनको उठा, तो दो साल में जितने मोटे होते हैं वो कभी नहीं मोटे हो सकते अगर वो ये चीज़ें ना, समझे भाई। तो जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी ट्रेडिशन को जब आप देख रहे होते हैं तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन जो है वो बुनियादी तौर पर इसलिए नहीं था कि आप जलजला जदगान तक गोश्त पहुंचाएं, लेकिन ये भी नहीं था कि जलजला जदगान को गोश्त ना पहुंचाए, वो ये था कि आप एक ऐसा माशरा कायम करें जिसमें इतनी बड़ी तादाद में भूखे नंगे लोग ना हों। तो जब आप कहते हैं कि भाई सारा का सारा तुम्हारे माशरे का जो गिलाजत और गंद है वो एक ही सुन्नत के अमल के नतीजे में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारा जो तकाजा होता है किसी सुन्नत की एक्सीक्यूशन का वो ये कि हमने एक ऐसा माशरा बनाया है जिसमें लोग बेघर हैं, लोग भूखे हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, बूढ़े हैं, धक्के खा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, लोगों को पूरे पूरे साल खाने को गोश्त नहीं मिलता। अब ये चूँकि है ये माशरा तो हमने ठीक बनाया, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए माशरा। अब हम क्या करें, ये सुन्नत इब्राहिमी को किस तरह करें कि सारा मसला एक ही दिन में हल हो जाए, लिहाजा इसका तरीका है इज्तिमाई। पहली बात तो ये कि आपको इतनी बड़ी तादाद में भूखे नंगे लोग आपके माशरे में ज़रई मुल्क में क्यों है भाई, ये तुमने क्यों नहीं सोचा कि तुम एक ऐसा माशरा बना रहे हो जिसमें हर आदमी इम्पोर्टेड गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, हर आदमी के पास इम्पोर्टेड गाड़ी है, आप लोगों की शक्लें देखो चमारों जैसी शक्लें होती हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में बैठे, कहाँ से आ रहे होंगे आप पैसा, और ये इतनी सारी बड़ी तादाद में इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जा रही हैं, इनका पैसा कौन, इनका बाप दे रहा है, कौन दे रहा है इसका पैसा, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, तुम तो एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क हो, तुम तो अनाज प्रोड्यूस करते हो, क्या प्रोड्यूस किया है तुमने कि तुम इतनी बड़ी तादाद में इतनी हैवी यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज इम्पोर्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो तुम यही कर रहे हो ना भाई कि जो चीज़ तुम पैदा करते हो सारी की सारी एक्सपोर्ट कर देते हो, तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं, तुम दुनिया का बेहतरीन कॉटन बनाते हो और सारा कॉटन अमेरिका के तलवे चाट चाट के बाहर भेजना चाहते हो, और यहाँ के लोगों के लिए तुम्हारे 8-8 हज़ार का तुम सूट बेचते हो, कॉटन का सूट तुम 8 हज़ार रुपये का बेचते हो, शर्म नहीं आती, और फिर तुम इसकी बुनियाद पर रेट करते हो इंटरनेशनल पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, अपने पोर्टफोलियो को दिखाते हो और उसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट से इंसेंटिव भी लेते हो। अरे भाई तुम कंट्रीब्यूट कर क्या रहे हो लोगों के लिए, ये किस किस्म का ढकोसला है कि जब इकोनॉमी ताकतवर होगी तो लोग खुशहाल होंगे? बिल्कुल झूठ बात है, ये एक झूठ बात है। इकोनॉमी ताकतवर होगी तो लोग खुशहाल होंगे, इकोनॉमी ताकतवर लोग भूखे मरते हैं भाई। वो तो एक सरमायादार अपने घर में पैसे लेके चला जाता है, तुम्हें क्या गुल अहमद तुम्हें पैसे देगा आके? तुम्हारे तुम्हें दिया भाई कभी गुल अहमद ने तुम्हारे घर में आके पैसे? तुम्हें सूट दे दिया मुफ्त में कि भाई तुम लोग पढ़ लो यूनिवर्सिटी, चलो सब लोग एक एक सूट ले लो। उसके गुल अहमद के पोर्टफोलियो बढ़ने से मेरा क्या ताल्लुक? नहीं उसके बाद लोग नौकरी करेंगे भाई, वो तो मुस्तकिल अपग्रेड कर रहा है अपनी इंडस्ट्री को, अपग्रेडेशन कर रहा है इंडस्ट्री को। अपग्रेडेशन जब वो इंडस्ट्री की करेगा तो लोग बेरोजगार ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा वो तरक्की करेगा उतने ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। तो बिल्कुल वन टू वन रिलेशनशिप है, बिल्कुल झूठ बकवास है कि उसके नतीजे में जब कैपिटल जो ग्रो करती है इकोनॉमी तो उसके नतीजे में लोग खुशहाल होते हैं। हिंदुस्तान तुम्हारे सामने 9% 11% उसका जो है GDP रहा है पिछले 4-5 साल से, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 9% गिर गया है। तो हमारे यहाँ अगर फर्ज किया कि ये इसके अंदर स्लॉटर हाउस वगैरह के अंदर जब ये लोग आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी शिफ्ट होगी बैंक्स के साथ, लिंक्ड अप हो जाएगा पूरा का पूरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें आ जाएगी। अगर फर्ज किया कि पाकिस्तानी जो आदमी बकरा तैयार कर रहा है और ऑस्ट्रेलियन से कम्पीट करेगा तुम्हारे ख्याल में, है भाई ऑस्ट्रेलियन से कम्पीट करेगा वो? पाकिस्तानी कभी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स हैं माइल्स के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइल्स के ऊपर फैली हुई। उनके साथ आप भावलपुर का जो वो है किसान जो खेती बाड़ी भी कर रहा है और जानवर भी पाल रहा, वो कम्पीट करेगा उसके साथ? ये भूखे मरेंगे यहाँ के लोग। तो हमारे यहाँ के जो मजहबी लोग हैं उनका दिमाग काम ही नहीं करता, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि गेम क्या हो रहा है उनके साथ। वो हर चीज में जाके कूद जाते हैं, हर चीज की इजाजत दे देते हैं, हर चीज को करना शुरू कर देते हैं और फिर उनको लोग रिप्लेस कर देते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा आपने करना शुरू किया लेकिन यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ, आप ऐसा करें से नमाज पढ़ाएं जाके। और हम जो है ये काम ये गंदा काम हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो खरबों रुपए जो इन्वॉल्व है वो तो सबको नजर आ रहे हैं ना भाई। तो पहली बात तो ये कि अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा कुर्बानी का, इसके अंदर आम आदमी इन्वॉल्व होता है, चूँकि वो कम पढ़ा लिखा है और जाहिल है इसलिए बहुत सारी गलत काम भी करता है, लिहाजा उसकी तथहीर करने की ज़रूरत है, ट्रेडिशन के अंदर जाकर उसकी तथहीर करने की ज़रूरत है कि जानवरों पर जुल्म ना करो, उनको गलत चीज़ें मत खिलाओ, उनको ये नहीं करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहो कि मैं खुद ही पालना शुरू कर दूंगा, जब मस्जिदों के पीछे फार्म हाउस बना दिया, ये आपके करने का काम नहीं है भाई, बल्कि आपको उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे जैसे उसकी होती चली जाएगी वैसे वैसे उसके इम्कान बढ़ते चले जाएंगे। हेलो वालिफा जाहिद कौन है? हाँ जाहिद, मैं यार अभी थोड़ा मसरूफ हूँ क्लास में, इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ। ओके भाई सही है। तो जो चीज़ हमने अभी ये देखने की कोशिश की है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले कुर्बान जिस तरह पाकिस्तान ही करते हैं ना कुर्बान, दुनिया में बहुत कम लोग इस तरह करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो एक रीज़न ये कि भाई ये पूरी दुनिया में नहीं हो रही, आप लोग क्यों कर रहे हो, पागल हो गया आप लोग, आप ज़्यादा इस्लाम में आता है क्या? तो पहली बात तो ये कि अगर किसी माशरे का कोई ट्रेडिशन मौजूद है और वो ट्रेडिशन जो है वो उसके नतीजे में किसी न किसी सतह पर एक इस्लामी असबियत पैदा होती है और एक कल्चरल कोहिजन पैदा होता है और किसी न किसी तौर पर लोग सुन्नत से जुड़ते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसमें नुकसान क्या है? तो या तो उसका नतीजा ये निकलेगा जब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होगी तो लोग उसकी कॉस्ट बेयर नहीं कर पाएंगे, जब उसकी कॉस्ट बेयर नहीं कर पाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जब उसकी कॉस्ट इस हद तक बढ़ जाएगी या तो उसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन जब आपका देखें किसी चीज़ के साथ आपकी एसोसिएशन अगर थ्रू इंस्टीट्यूशन होगी ना, इदारे के ज़रिए, तो आप में और उस चीज़ में और उस प्रैक्टिस में ताल्लुक पैदा नहीं होगा। यानी कि आजकल का जो तालीमी निज़ाम है इसके अंदर उस्ताद में और शागिर्द में एसोसिएशन बिल्ट नहीं होने देता, इसलिए उस्ताद का एहतराम नहीं करते शागिर्द। मदरसे के अंदर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक ताल्लुक होता है, सही है? तो इसकी वजह से वो एहतराम ज़्यादा करता है अपने उस्ताद का। लेकिन मदरसा चूंकि एक इदारा है लिहाजा उसका ताल्लुक उतना गहरा नहीं होता जितना एक इंडिविजुअल शेख से उसके उस्ताद का होता था। तो इदारा आता है तो कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर करता है। तो जब आप में और इस पूरी एक्टिविटी के बीच में एक इदारा आ जाएगा तो वो इदारा आपकी एसोसिएशन ख़त्म कर देगा उस पूरी प्रोसेस और एक्टिविटी से। जो मैं फोरकास्ट करूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो अगर कराची के हालात ठीक रहे और कराची में थोड़ी तरक्की वगैरह हुई तो 3 साल बाद कराची में इस पे पाबंदी लगा देंगे, 3 या 5 साल बाद, 3 to 5 years। कराची में बड़े बड़े स्लॉटर हाउस होंगे जो खुद ही जानवर लेके आएंगे, आपको वेबसाइट के ऊपर दिखा देंगे, आप उसे पिक करोगे और उसके बाद आप उसका गोश्त आपको घर पे पहुंचा देंगे। बल्कि वो आपसे यही पूछ लेंगे कितना गोश्त आपको तकसीम करना है, वो हम खुद ही कर देंगे तकसीम। जिस तरह होता है ना टेलीविज़न में जाते हैं गरीब और मुस्तहिक, गरीब और मुझे कोई गरीब और मुस्तहिक समझ के अक्सर मेरे पास मेल आती रहती है, आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 10 से 25 हज़ार रुपये मुबारक। तो गरीब और मुस्तहिक जो लोग होते हैं वो उनकी भी एक तैयार एक शक्ल होती है, बहुत सारे गरीब और मुस्तहिक लोग जिनको अक्सर मैं टेलीविज़न में देख रहा होता हूँ, ये उसमें भी था ये गरीब और मुस्तहिक में, इसमें भी था ये। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग बिठाए हुए ही होते हैं, गरीब और मुस्तहिक लोग में चेक तकसीम किए गए, वही खड़े बार बार जा के लेते रहे। तो बताने का मतलब ये कि वो तकसीम भी वही कर देगा और खुर से लेकर सींग तक सब चीज़ें उसके पास होंगी। ये हो रहा है जी, यही मैं बता रहा हूँ अर्बनाइजेशन की वजह से, और अर्बनाइजेशन आइडियलाइज हो रही है। अर्बनाइजेशन आइडियलाइज है यानी कि कराची का जो तर्ज ज़िंदगी है वो आइडियल तर्ज ज़िंदगी है पाकिस्तानियों की नज़र में। तो जाहिर है कि सब लोग तो कराची जैसे नहीं हो सकते, तो पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो बड़े देखे ना, पहली बात ये है गाँव के अंदर लोगों के पास बेचारों का इतनी कुव्वत खरीद थोड़ी होती है कि वो इस तरह करें। कराची और लाहौर और पेशावर 4-5 जगह होता है जहाँ पर पैसे खर्च हो। कराची के अंदर तकरीबन 70 अरब रुपए की उन्होंने खरीदारी की, 70 अरब रुपए के जानवर खरीदे और बेचे हैं कराची, 70 अरब रुपए के जानवर बेचे और खरीदे हैं कराची में, सही है? तो इसका मतलब ये है कि 3-4 शहर हैं जिनको आप काबू करो।
सर ये जो मार्केट का एक तरीका होता है तो वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेकर जाती है, तो ये कलेक्टिविटी को कैसे है फिर इज्तिमाईयत की तरफ?
नहीं, मैं इज्तिमाईयत इधर नहीं, मैं इज्तिमाई अभी तो ये जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है ये तो कराची के अंदर क्यों पैदा हुई? कराची में तो MQM की वजह से पैदा हुई। कराची में MQM वाले खाल छीन के ले जाते थे, तो पकड़ के मारना चाहिए था ना मुल्लाओं को, उनको मारते हैं, उनको जाके पकड़ मुकाबला करते हैं उनका। नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप अपना जानवर हमारे मदरसे में लाए खड़ा करें, हम यहाँ पे महफूज है आपका जाने, फिर हम यही कार्ड लें खा लें। तो कराची वालों ने बेचारे शुरू में इसी वजह से जानवर वहाँ रखने शुरू किए, इंडिविजुअलाइजेशन में नहीं, खौफ से एम क्यू छीन के ले जाती थी खाने।
नहीं सर, जो मल्टी नेशनल शुरुआत,
मल्टी नेशनल इज्तमाही कुर्बानी ये नहीं है, ये जो इज्तमाही कुर्बानी मदरसों के अंदर हो रही है ये बुनियादी तौर पर एक ही छत के नीचे सब कुछ हो जाए आपका, उसको रिप्लेस करेगा मल्टी नेशनल का स्लॉटर हाउस। इज्तमाहीत तो कोई पैदा नहीं हो रही ना इसके नजर में, इंडिविजुअलाइजेशन ही होगी।
आप घर बैठे आपको गोश्त मिलता है, आपको पता ही नहीं कि उसने क्या काटा है, कौन कौन उसमें शामिल था, उस कुर्बानी में आपको तो पता ही नहीं चला ना।
जवाब
यही मतलब ये तो दुनिया में जहाँ भी मतलब अर्बनाइजेशन हुआ वहाँ तो ये हो चुका है मतलब, और ज़ाहिर है अर्बनाइजेशन जब होगा तो ये तो खुद बहुत होगा। तो क्या है मतलब रिवायत राम कुर्बानी करते या ना करते, एम क्यू एम होती या ना होती, अर्बनाइजेशन के मतलब अमरीका में आप थोड़ी काट सकते हैं, मतलब डिफेंस सोसाइटी में भी गुज़िश्ता 2 साल से पाबंदी लग गई है कि आप सड़क पर नहीं काट सकते। अब वो अनारस लट रहा हूँ वो 2-3 साल बाद पाबंदी लगा देंगे, आप सराटना उस पर ना वहाँ पे कटवाएं, उसके बाद फिर वो वाला केस दिया जाएगा। तो ये तो मतलब अर्बनाइजेशन
की 4 के अंदर आप नहीं ले जा सकते अंदर जाने,
तो अर्बनाइजेशन की तो ट्रॉलरी है मतलब बुनियादी तौर पर। तो उलमाए कराम को अर्बनाइजेशन को मुताल्लिक बताना चाहिए कि भाई ये देखो ये कैसे मतलब।
तो सर मैं ये समझता हूँ इसके कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक कोई भी ऐसा प्रोसेस है, कोई भी ऐसा काम है जिससे लोग पब्लिक ज़्यादा इंटैक्ट रहते हैं, तो शायद फिर गवर्नमेंट को भी या स्टेट को भी उस पर इतनी वो जरूरत नहीं कर सकती कि सब लोगों पे पाबंदी लगा दी। वो तो पहले से ही बहुत सारे लोग उस अमल को पहले से अख्तियार कर चुके होते हैं, जो थोड़े बहुत रहते हैं उस पर पाबंदी लगा लेते हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही,
यानी ये नहीं है किसी की वजह से तो वो हुआ है, लोग मेंटली पहले से तैयार हैं, किसी ने किया है और जो थोड़े बहुत रह गए उस पर स्टेट पाबंदी लगा दी।
जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और स्टेट को इंसेंटिव भी दे देंगे वो कुछ ना कुछ।
अर्बनाइजेशन में तो ये मतलब फ्लैट सिस्टम के अंदर फकरों को रखना एक बहुत बड़ा मसला है। फिर ये कि फ्लैट के अंदर जो काटते हैं लोग अभी तो कटवा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो बड़े बड़े फ्लैटों में जो करोड़ करोड़ रुपए का, तो वो उसके अंदर से गुजर के जाना पड़ रहा है उन्हें पानी के अंदर, तो उनके लिए एक रैशनल है कि हाँ ये बात तो ठीक नहीं है, अभी क्या करें। अगर कोई इंतजाम हो जाता है स्लैटर हाउस दे विल एक्सेप्ट।
जी बिल्कुल,
तो बुनियादी तौर पर तो ये तो मतलब अर्बनाइजेशन का क्रॉनरी हुई मतलब।
जी, और अर्बनाइजेशन बगैर कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन के नहीं होती, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अर्बनाइजेशन हो और कैपिटलिज्म मौजूद ना हो।
लेकिन वो तो खाल साहब एक बात ये भी है कि जब हम बकरा देखते हैं और उसको अपने घर में रखते हैं, फिर उसको ज़बह करते हैं, उसका गोश्त वगैरह सब कुछ, तो हमें लगता है एक ओवरऑल हमारे कॉन्सेप्ट बनता है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ गोश्त लाना ही कुर्बानी अगर बन जाए, तो चंद साल बाद ये भी है कि गोश्त ना ला जाए तो क्या
नहीं ना, देखें ना मतलब शहर के अंदर जो है मतलब फ्लैट सिस्टम आ रहा है, फ्लैट सिस्टम में तो ये आप धंधे जो बता रहे हैं ये आप नहीं कर सकते, ये तो वो कर सकते हैं जैसे कराची यूनिवर्सिटी में मैं इंजॉय कर सकता हूँ, फ्लैट में फ्लैट वाला थोड़ी कोई अंदर है, वो तो उधर भरे हुए होते हैं, वो तो कुछ नहीं, वो उसका तो सब एक अलग इंतजाम होता है। फ्लैट सिस्टम जब आ जाएगा, ये तो एक जमीन है आपका अपना घर है, तब तो आप ये सब काम करोगे। फ्लैट सिस्टम में तो ये हो ही नहीं रहा, वो तो लोगों का कोई ताल्लुक ही नहीं उसके साथ, तो अल्टीमेट वो तो हो चुका है, डीलिंग तो हो चुका है, सिर्फ उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अगर हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो तो ऑलरेडी जमीन। अब KMC ने मतलब उलमाए कराम को एक वो भिजवाया जो मतलब सवालनामा भिजवाया कि जी मल्टी स्टोरी कब्रस्तान बनाना शरण क्या है आ जाए, तकरीबन 5 साल पहले जो है, तो तमाम अकादमी में फिक्र के उलमा ने कहा कि नहीं ये जो है आ जाए। अब इनसे पूछे कि भाई अगर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो तो तुम हलाल समझते हो, तो तुम जो है मल्टी स्टोरी कब्रस्तान की मुखालफत कैसे करो, दैट इज़ द क्रॉलरी ऑफ द मल्टी स्टोरी सोसाइटी। जब सोसाइटी के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी तो कब्रस्तान कैसे नहीं बनेगा, तुम कुछ भी कहते रहो जो मतलब, तो तुम उसकी तो मुखालफत कर नहीं रहे मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, मल्टी स्टोरी कब्रस्तान की मुखालफत कर रहा हूँ, तो मुखालफत आखिर में फेल हो जाएगी मतलब। तो बुनियादी तौर पर तो हमें मतलब सेशन जो है एक और करना चाहिए अर्बनाइजेशन के ऊपर, ये तो मतलब प्रॉब्लम ऑफ द जो है मतलब अर्बनाइजेशन है, और उसमें तो मतलब कैपिटल का मसला है, मतलब तो ज़ाहिर है मसाइल को वो कुछ शहरों में कर देंगे, यहाँ पे सोर्सेज को जो है रिसोर्सेज को इकट्ठा कर दिया जाए और वहाँ से आबादी को निकाल दिया जाए, मतलब जो कंट्री साइड से, और वहाँ पे जो है कॉरपोरेट फार्मिंग आ जाए, कॉरपोरेशन उसको कब्जा कर लें और लोग जो है फ्लैटों के अंदर पड़े रहे, मतलब पूरी दुनिया में इसी तरह हुआ है,
पूरी दुनिया में। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट फार्मिंग होती है वहाँ पे, और जहाँ इनएफिशिएंट फार्मिंग होती है वहाँ बंद कर दें, लोग जो हैं वो प्रोड्यूस ही ना करें, बैठे रहें भूखे नंगे बैठे रहें, वहाँ से इंतज़ार करें कि वहाँ से आएगा तो ये खाएंगे। तो ये तो आज हम उसको फिर यहीं पर रोक लेते।
तो क्या मतलब इसमें मैसेज किया है, मतलब कि अर्बनाइजेशन की मुखालफत होनी चाहिए या इज्तिमाई कुर्बानी की मुखालफत?
नहीं नहीं, इज्तिमाई कुर्बानी तो मैं बता रहा हूँ कि इज्तिमाई कुर्बानी का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो आगे चलकर जिस रैशनल के अंदर रिड्यूस होनी वाली है वो एक कैपिटल इंटेंसिव मैकेनिज्म ऑफ स्लॉटरिंग है, जिसके नतीजे में सारा का सारा पैसा इवेंचुअली कॉन्सेंट्रेट होगा किसी बड़े कैपिटलिस्ट ग्रुप के अंदर हाथ में, और उलमा को उठा के बाहर फेंक देंगे, बल्कि हो सकता है उलमा से ही
कर लेंगे कंसल्टेंट के तौर पर कि आप हाँ देख लेंगे इसके छुरी सही फेरी जा रही है, हाँ
सही फेरी जा रही है, नहीं
हो रहा है कलमा पढ़ा जा रहा है, नहीं हाँ
या आप पढ़ते रहें बैठ, ये आया था अपना KFC तो ये मौलवियों ने इस पर रेजिस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो हलाल करते हैं, तो उन्होंने नहीं आप, तो उन्होंने अपॉइंट कर लिया, मदरसों के लोग अपॉइंट किए थे हलाल करने के लिए, मदरसे का आदमी हलाल करता तो वो करवा लेंगे, हलाल करवा लेंगे आपसे, मशीन पे बटन आप उंगली रखते रहे, आप मशीन आप करते रहे। तो एक वो है अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन है, उसकी आप लोग डेली मोशन के ऊपर मर्सी स्लॉटरिंग इन इस्लाम आप देख सकते हैं, दो पार्ट के ऊपर है। वो बताता है कि जब इंसान कलमा पढ़ता है तो जानवर आराम से लेट जाता है, उसने करके दिखाया, फिर उसने दुनिया में जितने भी तरीक़े हैं हलाल जानवर को मारने के उसको कंपेयर करके दिखाया है मुसलमानों के तरीक़े से, सही है। और वो ये बताता है कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को ये हुक्म दे रखा है कि जब मेरा नाम पढ़ा जाए तो अपने आप को सुपुर्द कर दो। कल मैंने देखा कि उसने कई बार करके दिखाया, फिर वो एक लेके आया 300 पाउंड का भेड़, 300 पाउंड का, उसने कहा 300 पाउंड इसका वज़न है और इसको मैं और ये दो आदमी मिलकर ये नहीं उसको उठा, 1500 kg 300 पाउंड 150 kg का है, कब इतना ऊंचा और इतना पाउंड। उसको फिर उन्होंने गिराया और उसने कलमा पढ़कर उसको लिटाया तो वो उसने अपने आप को छोड़ दिया। जितने भी दुनिया में स्लॉटरिंग हाउस हैं वो उस सुन्नत तरीके से करते ही नहीं, उस तरह थोड़ी लिटाते हैं, उसको वो तो फिक्स हो जाता है और छुरी उसे गले पे चल जाती है। तो पहली बात ये बुनियादी तौर पर मास प्रोडक्शन का मसला है, मास प्रोडक्शन।
सर ये जो चिकन वगैरह बेचने वाले होते हैं उसको चिकन काटने को तो वो भी चिकन किस तरह पकड़ गया ना हवा में इस तरह से गर्दन पे शुरू कर लेते हैं, हाँ। जमीन पे भी नहीं
रखते, नहीं जमीन पे नहीं रखते,
हवा में पकड़ के इस तरह बस, और जैसे ही बस थोड़ा सा उससे खून निकला है तो उसको पैंक देते, वो जो उसके पास जो ड्रम्स होते हैं उसमें जब उसकी सांस निकल जाती, सांस निकल जाती तभी उसको उठा के,
हाँ
वो चलो वो तो एक वो नहीं है, लेकिन एक जो अर्बन सोसाइटी होती है
सब लोगों को पैसे कमाने की इतनी जल्दी होती है कि कुछ भी हो जाए बस जल्दी जल्दी काम हो जाए
बस,
बाकी कोई तरीका नहीं होता उसका। यहाँ पे क्योंकि मैं खुद ही एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से था, तो वहाँ पे तो अगर जानवर को लिटा के भी अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया कि जो कि इनह्यूमन हो, और तो वो लोग आपको कंडेम करेंगे, या आपने क्या किया अच्छा नहीं किया।
बिल्कुल सही बात,
उनके पास टाइम होता है ना, मसला है
उनके पास
टाइम, यही काम करेंगे अब कराजी में, बट टाइम
नहीं। तो जो मैंने बुनियादी तौर पर उसको आप कैपिटल के डिसिप्लिन के अंदर एक नॉन कैपिटलिस्ट डिसिप्लिन की टॉलरेट क्यों करेंगे? कैपिटल का डिसिप्लिन आपसे कह रहा है जल्दी कमाओ, जल्दी करो, और नॉन कैपिटलिस्ट डिसिप्लिन आपसे कुछ और कह रहा है, तो वो उसका डिसिप्लिन आप क्यों इख्तियार करेंगे? आप कैपिटल का डिसिप्लिन इख्तियार करेंगे क्योंकि उस डिसिप्लिन को इख्तियार करने के नतीजे में आपके आपके मसले हल होते हैं। ठीक है खालिद, आप फिर यहीं पर रोक लेते हैं, सही है।